नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। नई दिल्ली में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत रूस व्यापार मंच को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही।
पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम किया जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में भारत में जिस स्पीड और स्केल के साथ हमने बदलाव किए हैं वह अभूतपूर्व है। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस सिद्धांत पर चलते हुए भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा दोनों पक्षों की मजबूत क्षमता ये संकेत देती है कि द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी ताकत इसी विश्वास में निहित है।
बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। यह हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत और रूस ने दोनों देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिससे दोनों देशों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार तथा व्यवसाय के नए अवसर सृजित होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्र कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए काम कर रही है और आयकर को अब एक कठिन प्रक्रिया नहीं समझा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में एक निजी मीडिया संस्थान के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के उत्थान के लिए आयकर स्लैब को और अधिक पारदर्शी सरल बनाया जाना आवश्यक है। वित्त मंत्री ने कहा कि सीमा शुल्क ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन अगला बड़ा कार्य होगा। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना कमांडरों से वर्तमान और भविष्य के युद्ध क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एकजुटता, एकीकरण और नवाचार को मजबूत करने को कहा है। कल नई दिल्ली में द्विवार्षिक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन में उन्होंने बहु क्षेत्रीय युद्ध में विकसित हो रही समकालीन रणनीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं पर भी बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आश्वासन दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के इस्तेमाल के मामले में न्यायाधीश अत्यधिक सावधानी बरत रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि ऐसी तकनीक कभी भी न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर हावी नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अध्यक्षता वाली पीठ न्यायिक प्रणाली में एआई और मशीन लर्निंग के नियमन की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। राष्ट्र आज संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी 70वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। संसद भवन परिसर डॉक्टर आम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जनता के लिए खुला रहेगा। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो की उड़ानों में देरी और उनके रद्द होने की स्थिति में सुधार हो रहा है और उम्मीद है कि आज से यात्रियों को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। श्री नायडू ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान हवाई अड्डों पर लंबित उड़ानों की संख्या कम करने पर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित नई दिल्ली की सुंदर नर्सरी में चल रहे सरस आजीविका फूड फेस्टिवल में दर्शकों और प्रदर्शकों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले महीने की 29 तारीख से शुरू हुआ यह उत्सव 9 दिसंबर तक चलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।